संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। समय सार परमागम की चर्चा चल रही है, जिसमें आरंभ से लेकर मोक्ष अधिकार तक की चर्चा अपन ने की। यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि आचार्य अमृतचंद्र ने इस समय सार ग्रंथादिराज को आत्मख्याति टीका में सबसे पहले नाटक के रूप में प्रस्तुत किया, उसका नाटकीकरण किया। और उसके बाद तो फिर बनारसीदास जी ने नाटक समय सार लिखा, और धीरे धीरे यह ग्रंथ नाटक समय सार के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। फिर बाद में भेद करने के लिए जो हिंदी में बनारसीदास का जो समय सार था उसको नाटक के नाम से कहने लगे, और इसे अकेला समय सार कहने लगे। इन नाटकों में ये हजार वर्ष पुरानी परंपरा पर हमें ध्यान देना होगा। आज के जो लेटेस्ट नायक नाटक होते हैं ना, क्योंकि विज्ञान की वजह से जिस तरह की सुविधाएं हो गई हैं, उन नाटकों में और उस समय जो नाटक होते थे उनमें एक सूत्रधार होता था, फिर वो आकर के ये सब बातें बताता था। जो प्रक्रिया थी वो सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई। ऐसे 400 वर्ष पहले बनारसी दास के जमाने में भी नाटक के स्टेज को अखाड़ा कहते थे, इसलिए नाटक समय सार में वो बार बार ऐसा कहते थे, अखाड़े में अब स्वांग आया। और आज वो अखाड़ा शब्द सिर्फ पहलवानियों के लिए कि जो लड़ने की जगह है उसका नाम अखाड़ा रह गया है, और इसका नाम अपन ने मंच वगैरह ना मालूम क्या क्या नाम रख लिए हैं। तो हमें इसको उस चीज को भी समझ करके वैसे देखना पड़ेगा। जो बेस बना करके आते हैं उसके लिए ये स्वांग कहते हैं, बेस स्वांग। और इसमें बार बार इस बात पर वजन दिया है कि अपन सर्वसिद्ध अधिकार शुरू करने वाले हैं कि ये सब स्वांग हैं, जीव जीव से लेके मोक्ष तक सब स्वांग थे, माने ओरिजिनलिटी नहीं थी। जिस भगवान आत्मा की, जिस सर्वसिद्ध ज्ञान की बात हमें करना है, वो बात तो अब हम करेंगे। अभी तक तो ये भगवान आत्मा अनेक स्वांगों में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। तो ऐसे 8 स्वांग बनाए उन्होंने, एक जीव जीव का, एक पुण्य पाप का, एक आश्रव का, संबर का, निर्जरा का, बंध का और मोक्ष का। कर्ता कर्म को तो उन्होंने जीव अजीव में ही लिया ना, कि जीव अजीव ही कर्ता कर्म के बेस में आए, ऐसा कहके वो उसमें ही ले लिया। कहने का उनका आशय यह है कि तत्वों के नाम पर जितने अधिकार हैं उनको उनने स्वांग कहा। कर्ता कर्म अधिकार तत्वों के नाम पर नहीं है ना, इसलिए उसको छोड़ दिया क्या। और वो 9 में से 8 कैसे रह गए, तो उसमें वो जीवाजीव, जीवर्गा अजीवर्गा, पुण्य पाप को एक किया ना, इस तरह से वो एक कम रह जाता है। तो ये कहना चाहते हैं कि ये सब उसकी वास्तविक स्थिति नहीं है। वो ऐसा भगवान आत्मा नहीं है कि जिसके आश्रय से सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकट होती। हर अधिकार के आरंभ में अमृतचंदाचार्य देव आत्मख्याति में जब मंगलाचरण करते हैं तो वे उस ज्ञान को नमस्कार करते हैं कि जो ज्ञान इन बेसों में, इन स्वांगों में आने वाले आत्मा को पहचान लेता है, ये जान लेता है कि ये स्वांग है और इससे भिन्न जो ओरिजिनल आत्मा है वो वास्तविक आत्मा है, जो मौलिक आत्मा है वो कुछ अलग है। तो ऐसे पहचान लेने वाले स्वांग को, ज्ञान को यहां नमस्कार किया। अब इसे समझने के लिए जो आज थोड़ा बहुत चलता है वो जो बहुरूपिया वाली बात चलती है, वो वास्तव में वो नाटक का ही एक रूप है बहुरूपिया। बहुरूपिया क्या करता है? बहुरूपिया क्या करता है कि अलग अलग बेस बनाकर बाजार में आता है, और उसकी विशेषता इस बात में ही मानी जाती है कि जब वो पुलिस इंस्पेक्टर का बेस बना के आए तो अधिकांश लोग उसे पुलिस इंस्पेक्टर ही समझें, और पुलिस इंस्पेक्टर के आने से जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे घबराते हैं या तो जो भी करते हैं, वो उनका हो तो समझ लो कि वो वास्तव में सफल हुआ। और यदि लोगों ने जान लिया कि तो बहुरूपिया है, पुलिस इंस्पेक्टर का भेद बना के आया है, तो वो डांटेगा और जी हंसेगा, घबराएगा नहीं। तो वो है असफल स्वांग। और सफल स्वांग क्या है कि वो इनकम टैक्स के ऑफिसर बन के आए तो समझ लो कि सेठ जी का अकेला हार्ट ही फेल ना हो और बाकी सब कुछ हो, तो समझ लेना कि वो स्वांग में सफल हुआ। अब इस नाटक समय सार में वो क्या कहते हैं कि जो उसको पहचान लें कि ये तो बहुरूपिया है और बेस बना के आया है, वे तो हैं ज्ञानी। और जो नहीं पहचान पाए और उसे वो ही समझ करके हैं, वो हैं अज्ञानी, और वो दुखी होंगे। इसलिए वो हर अधिकार के आरंभ में उस ज्ञान को नमस्कार करते हैं कि जो ज्ञान इस स्वांग को पहचान लेता है। और हर अधिकार के अंत में लिखते हैं इति बंधो निष्क्रांता, ये बंद निकल गया, अब ये निकल गया, अब मोक्ष को भी लिखेंगे मोक्षो निष्क्रांता, मोक्ष निकल गया। तो मोक्ष निकल जाने के लिए है कि रखने के लिए है? मोक्ष तो अनंत काल में हम रहने के लिए है, यहां मोक्ष को भी निकाल दिया, क्योंकि दृष्टि के विषय में से निकालना है ना मोक्ष को भी, उसमें भी अपनापन स्थापित नहीं करना है ना, तो मोक्ष के साथ भी लिख दिया मोक्षो निष्क्रांता। तो वो जिसकी दुकान पे जाकर के बहुरूपिया रौब गांठता है, रोकर दिखाओ वही दिखाओ ये सब कुछ करता है, तो जो नहीं पहचान पाता है वो तो आवभगत करता है, दौड़ता है वही दिखाता है, सब कुछ करता है। और जो पहचान लेता है वो मुस्कुराता है, कुछ उसका आज्ञा नहीं मानता है, तो वो उसी वक्त वहां से आगे बढ़ जाता है। तो एक सेकंड भी वो वहां ठहरता नहीं है, क्यों कि अब ज्यादा ठहरा तो पोल खुल जाएगी, माने इसने तो जाने ही लिया, लेकिन जो ऐसा व्यवहार करेगा मेरे से तो अड़ोस पड़ोस वाले देखकर वो भी जान लेंगे कि मैं बहुरूपिया हूं, तो अगली दुकान पर भी मेरा जो मुझे करना है वो काम नहीं होगा। इसलिए वो उसी वक्त वहां से निकल जाता है, पहचानने वाले के सामने एक सेकंड भी खड़ा नहीं रहता, वहां पर वो नाटक नहीं करता। तो ऐसे ही कहते हैं कि पूरे अधिकार में वर्णन किया उस ज्ञान का, और अंत में उस ज्ञान ने जान लिया और वो जाना, और बंध निष्क्रांता, मोक्ष निष्क्रांता, आश्रम निष्क्रांता। और कहने का अर्थ यह है कि जब ज्ञान का उदय होगा तो ये आश्रम आश्रम भेद रूप जो विकल्प हैं ये खड़े नहीं रहेंगे, और भगवान आत्मा का अनुभव हो जाएगा। ये इस प्रकार से इन्होंने स्वांग की चर्चा की। अब सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में ये कहते हैं कि उस ज्ञान को, वहां तो वो कौन सा ज्ञान था कि जिस ज्ञान ने पहचाना, और अब ये कौन सा ज्ञान है कि ये सारे स्वांग खत्म हो गए और वो ओरिजिनल जो ज्ञान स्वभावी आत्मा बचा उसका नाम है सर्व विशुद्ध ज्ञान। ज्ञान ने अपनी तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी से वो सब भेद डाल दिया ना, कहते बंध में और आत्मा में भेद डाल दिया, मोक्ष में और आत्मा में भेद डाल दिया, ये जान लिया ना उसने, इसमें आत्मा जे है और बंधे है। इसलिए बार बार वो कहते हैं कि इन दोनों को भेद विज्ञान प्रज्ञा रूपी करवत, प्रज्ञा रूपी केंती छेनी, जो भी उसके नाम नाम अपन को देने हो, वो सब उन्होंने बार बार कही कि वो ही एक साधन है। मोक्ष में अधिकार में कहा था ना, और उससे जान लिया तो अब क्या बचा कि वो भगवान आत्मा बचा जो त्रिकाली ध्रुव है, सर्वशुद्ध ज्ञान है। तो अब फिर एक बार निष्कर्ष के रूप में वो कहते हैं कि वो क्या रहा, तो यहां से ही शुरू करते हैं कि वो भगवान आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। यद्यपि ये बात कर्ता कर्म अधिकार में कही थी, और सबसे बड़ा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार था, फिर भी जब उपसंहार के इस अधिकार में आए तो फिर उसी विषय को उन्होंने उठाया। क्या कि तू ये निर्णय कर कि अब तेरे का जो बचा है तू, तो वो कैसा आत्मा बचा है? तो कहते वो अकर्ता अभोक्ता आत्मा बचा है। तो कैसा आत्मा बचा है? ज्ञाता दृष्टा आत्मा बचा है, वो पर का कर्ता भोक्ता नहीं है। इसमें सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में दो तीन स्टेप हैं जहां आचार्य अपनी करवट बदलेंगे। आज मैं जो व्याख्यान कर रहा हूं अभी, वो तो एक 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 लाइन पर चलेगा, और जो दूसरा व्याख्यान आएगा वो करवट बदल के आएगा। तो उससे आप घबराना नहीं कि क्या हो रहा है, मैं सब उस वक्त बताऊंगा कि क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अभी अभी जो कह रहा हूं उससे भी नहीं घबराना, क्योंकि वो एक करवट से सोने की बात है। वो अकर्ता अभोक्ता की बात कह रहे हैं। पहली ही गाथा में लिखा कि अब भगवान आत्मा को अकर्ता सिद्ध करते हैं, और वे चार गाथाएं हैं जिनकी चर्चा अपन ने थोड़ी सी कल की थी, और जिनकी टीका में उन्होंने लिखा है कि जीवो ही तावत कृमिनी मात्म परिणाम ही रुतपद मानो जीवा एव नो अजीवा ए, वो जो गाथाएं हैं। तो ये परद्रव का भगवान आत्मा रंच मात्र भी कर्ता भोक्ता नहीं है, और परद्रव उसके भी रंच मात्र कर्ता भोक्ता नहीं है। तो इन गाथाओं की टीका बहुत छोटी सी लिखी, और अंत में लिखा कि अतो आत्मा अकर्ता अवतिष्ठते, कि इस तरह आत्मा अकर्ता सिद्ध हो गया। और कैसे सिद्ध हुआ? तो कहते प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने सुनिश्चित क्रम के अनुसार ही होती है, इसलिए तुझे पर में कुछ करने की तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्या? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय पर्याय होगी ही, तू नहीं करेगा तो नहीं होगी, मैं नहीं करूंगा तो ये काम नहीं होगा, ऐसा जो तेरे दिमाग में फितूर खड़ा हुआ है वो तू दिमाग से निकाल दे। उसका नाम है जीव अजीव नहीं होता और अजीव जीव नहीं होता। जीव अजीव नहीं होता माने जीव अजीव में कुछ नहीं करता, जीव को अजीव में कुछ नहीं करना, जीव को अजीव में कुछ भोगता नहीं है, ख्याल में है ना, जीव का अजीव का स्वामी नहीं है, इसलिए तेरे को उसकी कोई फिक्र नहीं करना। कि साहब आप बात तो कहते हो कि ये सब ठीक है कि मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन मुझे ये बता दो कि इसका कौन करेगा तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊं। देखो मेरे पास एक छोटा 2 वर्ष का बच्चा है, और इसको मैं बराबर संभालने में लगा रहा हूं, और मैं ये समय सार की बात सुनने में उपयोग नहीं लगा पा रहा हूं। तो आपने कहा कि देखो पंडित जी आपको समय सार समझना है ना, तो इस बच्चे का विकल्प छोड़ो। क्या अब आप बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनो तो आपकी समझ में आएगी कि भाई बहुत अच्छी बात कहते हो कि बच्चे को कौन संभालेगा बताओ, मुझे बता दो कि ये देखेगा तो फिर मैं निश्चिंत ही होके सुनूंगा, और कोई नहीं देखे तो मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, ये तो वाला प्रश्न खड़ा होता है ना। तो ऐसे ही कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल निश्चिंत हो से पर की तरफ से छोड़ दो अपने उपयोग को, और अपने आत्मा में जाओ, उसे जानो देखो और कुछ मत करो। तो वो कहता है ये बताओ कि इसका फिर करेगा कौन कल से? तुम मेरे से कहते तो कि निश्चिंत हो जाओ, कैसे निश्चिंत हो जाओ, लेकिन अगली व्यवस्था तुम मेरे को बताते ही नहीं हो कि ये करेगा, और मैं जरा उसे देख भी लूं करते हुए कितना जिम्मेवार आदमी है। नहीं तेरे वो ये कह कि आप निश्चिंत रहो मैं सब करूंगा, और मैं जब निश्चिंत हो जाऊं तो वो मेरे से पहले वो निश्चिंत हो जाए, अगर वो बच्चा था मरे जिए ऐसा नहीं चलेगा। मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। क्यों? मुझे संभालने वाला बताओ, और उसे संभालते हुए मैं साल से महीना तो देख लूं अपनी आंखों से तो मैं शांति से मर सकूं। इसे शांति से जिंदा नहीं रहना है, इसे शांति से मरना है। नाराज मत होना नहीं। जीवन भर तो अशांत रहना ही है ना, दोनों जीना दोनों सीना तो है ही, से उसके पहले से रिटायर्ड होना नहीं है। ख्याल में आया ना, इसकी फिक्र तो मेरे मरने के बाद क्या होगा उसकी है। मेरे से बहुत लोग कहते हैं यहीं आगे कहते हैं, आप एक बात मुझसे, वो आए थे ना इस विश्वविद्यालय के, लाडनू विश्वविद्यालय के दो तीन प्रोफेसर, तो कहते साहब मैं एक बात पूछता हूँ, आपने अपने बाद क्या किया, क्या तैयार किया, किसको तैयार किया, क्या तैयार किया। मैंने कहा मैं अपने बाद के पहले ही सब छोड़ना चाहता हूं और आप मेरे मरने के बाद की जिम्मेवारी मेरे माथे मर रहे। अभी तक इतना तो है कि मरने से छुटकारा मिल जाएगा कोई भी काम से, अब तुम तो कहते मरने के बाद का इंतजाम भी करके बताओ मेरे को, तुम मैं मानूं। तो हम इतना सात पीढ़ी का इंतजाम करने के बाद में भी आठ पीढ़ी की चिंता करने वाले लोग हैं। आचार्य कहते हैं कि भाई वो प्रत्येक द्रव्य का किस वक्त क्या परिणमन होगा वो बिल्कुल सुनिश्चित है, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा है समय सार में अमृतचंद्राचार्य ने डाली संकेत के रूप में। तुम बिल्कुल, क्योंकि हम निश्चिंत होते ही नहीं है कि बिल्कुल नक्की है कि वो नक्की तो है और नक्की होगा वो ही होगा, लेकिन उसे कोई करेगा ना तब होगा ना, ये भी तो है साथ में, निमित्त भी तो होता है ना, भले ही करता नहीं हो लेकिन होता तो है ना, तो मुझे होगा जो बता दो ना। तो वो कहते कि निमित्त भी नक्की है, वो उस द्रव्य का जो होना है उस होने का वो जो निमित्त बनेगा वो निमित्त भी नक्की है। मैं तो छोड़ दूं क्यों प्रति जी, लेकिन विद्यालय चलेगा कि नहीं फिर बाद में, क्या आप बिल्कुल छोड़ दो, सब बिल्कुल क्रमबद्ध है, भगवान के ज्ञान में झलका होगा वो सब होगा, तो निमित्त भी तो होगा, तो उन्होंने निमित्त तो बताओ कि भाई ये चलाएगा निमित्त रूप से सही ना कहीं कर्ता के रूप में। कि मैंने ये कब कहा कि चलाएगा, चलाएगा क्या निमित्त होगा, मैंने तो ये कहा है भगवान कहते हैं कि ये चलना होगा तो चलेगा और बनना बंद होना होगा तो बंद होगा, ये मैंने कब कहा कि चलेगा, इसमें भ्रम हो जाता खड़ा, ये बंद होने का इसका काल आ गया होगा तो बंद होगा, कि वो भी तो काम है कि हाँ वो भी एक काम है तो उसका भी तो कोई निमित्त होगा कि हाँ उसका निमित्त होगा। अब मुझे चार संभाव पता नहीं है तो पांचवा संभाव का मैं क्या बताऊं, जब मुझे यही पता नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका क्या हो रहा तो उसका निमित्त कौन होगा ये मैं कैसे बता सकता हूं, बोलो। तुम्हारी निश्चिंताई का आधार ये नहीं होगा कौन सा कि ये तो चलेगा ही, आप चिंता मत करो कोई ना कोई आएगा और चलाएगा, ये तो कल्पना लोक की उड़ान है, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। इसके आधार पर तू निश्चिंत होना चाहता है तो हो गया निश्चिंत, तू समझ ले आज ही अनंत चिंता को नया मोल ले रहा है। क्या कि चिंता मत करो कोई ना कोई चलाएगा, ये कोई ना कोई चलाएगा माने नहीं चले ये तेरे को स्वीकार नहीं है, माने वस्तु का स्वरूप स्वीकार नहीं है, जो होना है वो तुझे स्वीकार नहीं है, होना तो यही चाहिए कि ये चलना चाहिए, ख्याल में आए ना। अब इसके बारे में तुम बताओ और वस्तु स्वरूप क्या है कि जो होना होगा वो होगा और नहीं होना होगा वो नहीं होगा, वस्तु स्वरूप ये। पीवनचंद जी साहब एक ख्याल में आई ना बात, ये बहुत मार्मिक है, वो कहते तब अकर्ता की तरफ तू जाएगा, तो एक तो परिद्रव्य ऐसा कह के कि जीव अपने क्रिमिनिमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है अजीव नहीं, और अजीव अपने क्रिमिनिमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव है जीव नहीं, तो पर के में क्या होना वो तो तेरी बिल्कुल खत्म है, और पर में कितनी चीजें शामिल है वर्ण आदि से लेकर राग आदि तक वो सब समझ लेना। वो 29 प्रकार के जो भाव है जीवाजीवाधिकार में बताए थे वो सब पर है और उसमें तेरे को कुछ नहीं करना, ये अकर्ता की बात हुई। अब अगर मेरे में जो मेरी पर्याय हैं तो उनका तो करता है, तो मूल गाथा में लिखा के हां तू अपनी पर्यायों से अनन्य है, वे तू हैं, वे तेरी हैं, और उनका कर्ता भी तू है और उनका भोक्ता भी तू है। यहां ये कह रहे हैं, ये गाथाओं का मूल भाव है। मैं आप द्वारा पढ़ना नहीं चाहता हूं, अपने पास समय नहीं है इसलिए, लेकिन आप पढ़ लेना कि जो द्रव्य है वो अपने गुण पर्यायों रूप से स्वयं उत्पन्न होता है, ऐसी गाथा है। स्वयं उत्पन्न होता है, वो उसका करता है। तो ठीक है, अब वो तो इतना काम तो मेरे जुम्मे है कि नहीं, तेरे जुम्मे कुछ नहीं है कि करूंगा मैं, और मेरे जुम्मे कुछ नहीं है कि जो होना है वो नक्की है और उसमें कुछ भी फेरफार संभव नहीं है। वो तो जो होना है उसका कर्ता तू है पाटनी जी, जो उसकी चिंता का कर्ता तू नहीं है। और तू चिंता करता है तो ऐसा लगता है कि तेरे प्रणमन में चिंता होना नक्की है। समझ में आए ना, जो होना नक्की है उसके लिए क्या चिंता की जरूरत है। चिंता तो एक अलग कार्य है, वो जो होना है उससे भिन्न कार्य है। इसलिए कहते हैं कि वो अपने कृमि निमित्त परिणाम से अपने समय पे बिल्कुल आ जाएगा, तेरे को उस बारे में रंच मात्र भी सोचने की जरूरत नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे कि वो जो सामने वाला गेंद फेंकता है तो जो होशियार होता है ना उसको, वो ऐसे हाथ कर लेता है क्योंकि उसे पता है कि गेंद जिस रफ्तार से आ रही है, जिस दिशा में आ रही है, वो यदि सही दिशा में आई तो बिल्कुल मेरे हाथों में आकर के आएगी। उसे कभी ऐसा विकल्प आता है कि कहीं उसने रास्ता में मुड़ के रास्ता बदल दिया तो ऐसा विकल्प आता है? ऐसा विकल्प आए तो कभी वो कैच करे ही नहीं सके। उसने कैच कर लेते, कैच तो समझते ना सब लोग, कि कैच नहीं समझते? तुम्हारा भगवान आत्मा समझे चाहे नहीं समझे, कैच नहीं समझे, ये कैसे हो सकता? हर एक निश्चिंत रहता कि नहीं निश्चिंत रहता बिल्कुल आंख बंद करके? तो ऐसे ही ये जो गाथाओं में जो क्रमबद्ध की संक्षिप्त में चर्चा की, ज्यादा तो अपने पास चर्चा करने का अवसर नहीं है, जिनको इसके क्रमबद्ध पर्याय क्या चीज है इस बात को गहराई से जानना हो तो अपनी जो क्रमबद्ध पर्याय नाम की किताब है उसे पढ़ें, ख्याल में ना, तो उनको ये बात ख्याल में आएगी क्रमबद्ध पर्याय क्या चीज है। यहां तो सिर्फ इन गाथाओं के संदर्भ में और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का सेंट्रल आइडिया क्या है उसके संदर्भ में ये बात कही जा रही है। जब ये बात हो गई तो क्या करते हो तुम, इतना होने के बाद में तो फिर भगवान आत्मा क्या करता है? पर का भगवान, पर के संदर्भ में बात हो रही, पर का कुछ करता नहीं, जानता भोगता नहीं, इसमें बराबर गाथाएं आ गई। तो क्या करता है? तो अभी 319 गाथा और 320 गाथा पे अपन चलते हैं। 319 और 320 गाथा में जो अगला स्टेप उन्होंने खड़ा किया कि क्या करते हैं, सुनो। नबी कुबैण अभी बे आई नानी कमाई बहुबारायम जानई पुण्य कम में फलम बंधम पुण्य पुण्य पावन से जित्ती रहे बनानम अकार्यम त अवेदयम चेब जानई बंधव मुखम कम मुद्दय निज्जरम चेब। बहुत स्पष्ट है, क्या कहते हैं कि नबी कुबई नबी बेई, ये भगवान आत्मा ना करता है और ना भोगता है। किसके बारे में बात है कोमल सिंह जी? तो उसमें दो गाथा में प्रणानी माने ज्ञानी कम्मायम बहु पयायारिम, बहुत प्रकार के कर्मों को, वो ज्ञाना वर्णादि कर्म ले लो, नो कर्म ले लो, शरीर आदि ले लो, धंधा पानी ले लो, और राग देश रूप भाव कर्म ले लो, क्यों ये सब पर ही है ना? तो मामला पर के मामले में हुआ कि नहीं हुआ? परमात्मा ख्याल में है ना, बहु पयाराय कम्माणी, बहुत प्रकार के कर्मों को भगवान आत्मा ना करता है और ना भोगता है। तो क्या करता है? पर का क्या करता है? कुछ नहीं करता है। नहीं, ये गाथा ऐसा नहीं कह रही, पढ़ो देव गाथा। जानई पुण्य कम्य फलम, ए भगवान, आत्मा कर्म को, कर्म के फल को, बंध को, पुण्य को और पाप को मात्र जानता है। यह सब पर की गिनती है। इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में पर को जानता है, यह सिद्ध कर रहे प्रदीप जी। आगे नहीं जानता है भी सिद्ध करेंगे। मैंने बोला ना, करवट बदलेंगे तब बात है, वो अभी से घबराना नहीं। वैसे कोई घबराता नहीं है, तो बहुत अच्छे होशियार आदमी हो गए हैं, लेकिन तो भी मैं इतना सेंटर आइडिया दे दूं। लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूं कि नहीं तर वो अंदर में जो वो कांटा खड़ा होता है ना, वो इस गाथा को ही नहीं समझने देता है, इस गाथा को पढ़ने ही नहीं देता है, इस गाथा का क्या अर्थ है उस पर हमें विचार ही नहीं करने देता है। ये मूल गाथा में लिखा कि नहीं लिखा कोमलचंद जी, अभी किताब में है कि नहीं? कि मेरी किताब में ही है। देखो फिर पढ़ता हूं गाथा। नभी कुब्बई नभी बेई, रानी कम्माई बहु पयाय आ रही, जानई पुण्य कम्य फलम, बंधम पुण्यम व पापंचे। इनको जानता है। और आगे देखो हम कैसे, कि जिट्ठी दहेव नाणम अकारयम तह अवेदयम चैव, जानई बंधे मोखम कमुद्दे निजरम चैव। क्या कहते हैं, जैसे हमारी जो दृष्टि माने आंख है, वो पदार्थों को मात्र जानती है, करती नहीं और भोगती नहीं, लेकिन मात्र जानती है। ऐसे ही भगवान आत्मा बंध को और मोक्ष को और कर्म के उदय को और निर्जरा को मात्र जानता है, करता नहीं है। देखो अगले पुत्र की बात नहीं है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद की बात नहीं है, निर्जरा का करता आत्मा नहीं है ऐसा कह रहे, और मोक्ष का करता आत्मा नहीं है, और बंध का करता आत्मा नहीं है, और मां इन सबको जानता जरूर है। जो यहां जानने की स्थापना है कि नहीं, कहीं उसका निषेध भी होगा, लेकिन जहां जानने की स्थापना है तहां जानने की स्थापना करना चाहिए कि नहीं, कि इस गाथा में से भी नहीं जानना निकालना। ईमानदारी क्या है समय सार के साथ, आत्मख्याति के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यदि यह बात है तो उसी जंके की चोट, उसी ताकत से इसकी स्थापना होनी चाहिए कि नहीं। तो निषेध की गाथा आएगी तो निषेध की बात भी होगी। देखो क्या कहते, जिट्ठी दहेई वेणानम। अब उन्होंने उदाहरण दिया बहुत अच्छा अग्नि का, कि अग्नि को ईंधन क्या करता है, जलाता है। ईंधन अग्नि के जलाने की क्रिया का करता है, सुनो। और दूसरा उदाहरण दिया है कि वो क्या है, भोगता है ना। ईंधन तो अग्नि को जलाता है और लोहे का गोला अग्नि को भोगता है। देखो कर्ता और भोगता के कितने सुंदर उदाहरण है। लोहे का गोला अग्नि को जलाता नहीं है, वो तो बेचारा अग्नि से जलता है, लेकिन जो ईंधन है वो भी अग्नि से जलता तो है, लेकिन वो जलाता भी है अग्नि को। समझ में आया कि नहीं है? ईंधन नहीं हो तो अग्नि बुझ जाए। तो ईंधन क्या करता है, अग्नि को जलाता है, और लोहे का गोला अग्नि को भोगता है, और कोई दूसरा दूर से देखने वाला व्यक्ति अग्नि को जलती हुई अग्नि को देखे, और लोहे का गोला जल रहा है ये देखे, माने कैसा? देखो कोयला, कोयला माने ईंधन, समझे ना, और उसकी हमने भट्टी लगाई और उसमें लोहे का गोला डाला, कोयला जल रहा है और लोहे का गोला भी जल रहा है। नहीं, कोयला तो अग्नि को जला रहा है और लोहे का गोला जल रहा है। समझे? यद्यपि कोयला खाक हो जाएगा और लोहे का गोला खाक नहीं होगा, फिर भी लोहे का गोला अकेला भोगता है, वो अग्नि बोलो खुद जलता है, अग्नि को उसे जलाना पड़ता है, अग्नि को उसे गर्म करना पड़ता है, लेकिन ईंधन को अग्नि गर्म करती है, फिर वो ईंधन अग्नि को ताकत देता है और बढ़ने लगती है। वो तो यहां कहते हैं, अब दूर बैठा हुआ एक जीव, उसकी आंख, आंख तो आंख क्या करती है, वो ईंधन के समान अग्नि को जलाती है कि लोहे के गोले के समान भोगती है? बोलो, जलाती है कि जलती है? कि दूर बैठी आंख ना अग्नि के गोले को जलाती है और ना उससे जलती है, तो क्या करती है कि सिर्फ जानती है कि ये ईंधन जला रहा है और लोहे का गोला जल रहा है, बस बिल्कुल। लेकिन वो आंख जानती भी नहीं। आंख जानने का मतलब यूं समझ लेना कि आंख तो, आंख तो पुद्गल है। और एक बच्चा के खड़ा हो जाएगा अन्ना जी का, कि वो कहेगा क्यों कि पंडित जी ने गलती कह दिया कि आंख देखती है, आंख थोड़ी देखता, आंख के पीछे आत्मा देखता है। क्यों? तो 8 वर्ष के बालक से 60 वर्ष का पंडित हार जाएगा। क्यों? कितने बच्चे हो गए अन्ना जी आपके? क्योंकि उनका राग तो सीमित हो गया है। क्यों? और उनका राग सीमित हो गया है और वो राग भी ऐसी जाति का है कि उनके को भोग की सामग्री जुटाने वाला राग है उनके पास, मां बाप के पास। एक दो बच्चों में सीमित हो गया है और उन्हें भोग की सामग्री जुटाए इस जाति का है, और इनका राग असीमित है और उनके दिमाग में दिनवाणी उतार दें, कुदेर दें, ऐसा राग है। वो क्वालिटी भी अलग है और सीमा भी बार है। और अन्ना जी खोजते फिर रहेंगे, कोई 20,000 रुपया दे दे तो मेरे नाम बार दो लोगों को बुलाऊंगा। ये तुम्हारा काम है, इसकी चिंता तुम करो। तुम तो बच्चों के दिमाग में भरो, इसकी करेंगे जो करेंगे, जो होना होगा होगा, क्या मध्य में हो जाएगा, काय को विकल्प करते हो? क्यों? तो अपनी बात क्या चल रही है? दृष्टि जहेज विनाणम, जैसे दृष्टि अग्नि को देखती जानती तो है लेकिन उसको करती भोगती नहीं है, ऐसे ही नाणम ज्ञानी का ज्ञान काय को, कर्म को, उसके उदय को, उसकी निद्रा को, उसके बंध को, उसके मोक्ष को देखता जानता तो है, करता भोगता नहीं है। एक गाथा में ये सिद्ध किया। 120वीं गाथा तो अपने आप बहुत प्रसिद्ध है। जैसे नाचार्य ने बहुत लंबा लंबा इस पर विस्तार से सारी बात लिखी। असलियत में बात क्या है कि पादमी जी, जय सेनाचार्य ने मोक्ष अधिकार यहां खत्म किया है, अमेचंदाचार्य ने तो वहां खत्म कर दिया, और वो यहां तक मोक्ष अधिकार मानते हैं और इसके बाद सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार मानते हैं। हमारे पूर्वाचारी लोग बहुत ही सभ्य और बहुत ही चिंतक थे। वो अपने पूर्वाचार्यों के प्रति भगवान जैसी श्रद्धा रखते थे, उनकी एक एक बात को प्रमाण मानते थे, और जो बात उनकी नई समझ में आती थी उसे भी बड़ी दृढ़ता के साथ में रखते थे कि एक अर्थ ऐसा भी हो सकता है। अभी कुंद ने तो अधिकार बांटे नहीं थे, बाद में जब टीकाकारों ने बांटे तो अमेचंदाचार्य को लगा कि वहीं खत्म हो गया मोक्ष अधिकार, और अब यहां से उनने मोक्ष अधिकार शुरू कर दिया। ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में ले ली ये गाथाएं 308 से लेकर के, और इनने वो 320 पे जाकर के खत्म किया। और वो तो बहुत बड़ा अंश है जिसमें गुरुदेव ने पूरे पूरे इतने प्रवचन किए कि किताबों की किताबें बन गई। वो 320वीं गाथा कहलाती है। वो 320वीं गाथा नहीं है, वो गाथा के अंत में जीवाजीवाधिकार से लेकर मोक्ष अधिकार तक के पूरे प्रकरण पर उन्होंने अपना सारांश और कमेंट्री प्रस्तुत की है। वो है, वो भाग्य से 320 गाथा के बाद लिखी गई, टीका लिखने के बाद, क्योंकि उसमें जो चर्चा है वो 320 गाथा की विषय वस्तु नहीं है, वो विषय वस्तु जो पूरे समय सार की है। लेकिन वो 320 ना गाथा में ये लिखा, 320 गाथा में ये लिखा, जो बातें उसमें लिखी हैं वो 320 गाथा में है ही नहीं। मूल गाथा में हम पढ़ते हैं तो कैसे हो, इसमें कैसे हो सकता है? लेकिन वो हमारे दिमाग में घुस गई बस वो बात, कोई देखता तो है ही नहीं 320 गाथा में क्या है। 320 गाथा में तो मालूम क्या कर रहे हैं, उसमें तो मालूम और भी आगे तक की सब बातें लिख दी उन्होंने, और इसमें तो ये कह रहे हैं कि यहां कर्ता और भोक्ते का निषेध कर रहे हैं प्रदीप जी, और जानने का समर्थन कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं उसे डंके की चोट। जानता भी नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दिट्ठि जहि विनाणम अकारयम तह अवेदयम चेवे जानई बंधवे मोक्षम कम मुद्दे निज्जरम चैवे। गुरुदेव इसमें बताते हैं कि बंद और मोक्ष तो जाना जाता है, बंद और मोक्ष करना थोड़ी है तेरे को, क्यों बंद और मोक्ष जैसे भिन्न तत्व है ना, मुझे मोक्ष तो प्राप्त करना ही है। क्यों छपरा जी करना है कि हो गया काम, नहीं होने वाला है तुम्हारा काम। मोक्ष तो तुम्हें जब होगा तो तुम्हारा ज्ञान उसे जानेगा, बस तुम्हारे जुम्मे इतना है, तुम्हें मोक्ष के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि मोक्ष के कर्ता तुम हो ही नहीं। मोक्ष तो परतत्व है ना, द्रव्य मोक्ष के भी कर्ता नहीं हो और भाव मोक्ष के भी कर्ता नहीं हो, द्रव्य बंद के भी कर्ता नहीं हो, भाव बंद के भी कर्ता नहीं हो, क्योंकि यदि तुम बंद के कर्ता होते तो मोक्ष के भी कर्ता होते, जब तुम बंद के कर्ता ही नहीं हो तो मोक्ष के कर्ता ही नहीं हो। वो जैसे ना चार्य की जो टीका है ना, उसमें एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, ये बात उन्हें ऐसे कहते हैं, उसमें संग्रह में भी है कि हल्दी और चूना मिलता है, तो हल्दी है पीले रंग की और चूना है सफेद रंग का, और मिलकर हो जाता है लाल रंग, तो लाल रंग का कर्ता कौन है? हल्दी का चूना। वो लाल रंग है वो किसका है, हल्दी का रंग है कि चूने का रंग है? ऐसा प्रश्न किया, बोलो। मान चूना का रंग तो सफेद है और हल्दी का रंग पीला है, तो झगड़ा निपट गया। अब वो दोनों के मिलने से लाल हुआ, तो वो लाल रंग हल्दी का है कि चूना का है, कि दोनों का मिलकर है? दोनों का मिलकर तो कुछ होता नहीं, दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया तो करते नहीं। लाल देखने में तो आ रहा है, तो पूछा उनने कि वो लाल रंग है किसका, तो उनने कहा लाल रंग है ही नहीं। ऐसा लगा क्यों कि हल्दी और चूना मिलते ही नहीं, उनके बीच में तो बज्र की दीवार खड़ी है, ऐसा लगा। ये मिल गए, अज्ञानी को मिले दिखे होंगे, वो मिले मिलाए लाल रंग में, ज्ञानी जन तो चूने को सफेद रंग रूप ही देखते हैं और हल्दी को पीली रंग रूप ही उस मिले हुए में भी देखते हैं, ऐसा लगा। ये तो उदाहरण है। तो उन्होंने कहा कि रागादि जो है इसका कर्ता आत्मा निश्चय ऐसे है कि व्यवहार ऐसे है, तो उन्होंने कहा अशुद्ध निश्चय ऐसे आत्मा करता है और व्यवहार ऐसे पुद्गल करता है, तो उन्होंने कहा परम शुद्ध निश्चय ऐसे कौन करता है? फिर से बोलो क्या? तो उन्होंने कहा परम शुद्ध निश्चय ऐसे राग आदि होते ही नहीं, उनका कर्ता कौन हो गया? तो परम शुद्ध निश्चय में तो राग आदि की सत्ता ही नहीं है, वो तो त्रिकाली भगवान आत्मा के अलावा कुछ देखता ही नहीं है, उसकी दृष्टि में तो राग आदि उत्पन्न ही नहीं हुए, हल्दी और चूना मिले ही नहीं। परम शुद्ध निश्चय ने तो हल्दी और चूना को मिला हुआ कभी देखता ही नहीं, वो तो जुदा जुदा ही देखता है। क्या कह रहे? इसी गाथा की टीका में लिखा है ये सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार, कि ये जो तू तो बिल्कुल अकर्ता अभोक्ता है, ये अकर्ता अभोक्ता की सिद्धि है। इति अकर्ता अवतिष्ठते तथैव भोक्ता अवतिष्ठते, ऐसा बार बार कहा। इस तरह भगवान आत्मा अकर्ता सिद्ध हो गया, इस तरह भगवान आत्मा अभोक्ता सिद्ध हो गया। अब देखो आगे चलो, कहते क्यों, फिर उसी पे कहते हैं ये तु कर्तारम आत्मानम पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जनवत्तेषाम न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। 199 मां कलश आचार्य अमृतचंद्र का बहुत मार्मिक है ये, आगामी गाथाओं की टीका का, गाथाओं का उत्थान का रूप कलश है। मालूम क्या कहते हैं, ये तु कर्तार मात्मानम तमसा तथा पश्यन्ति, अपने अज्ञान अंधकार के कारण जो लोग आत्मा को पर का कर्ता मानते हैं, पर कर्तृत्व की बात ही है ना, वे लोग मुमुक्षुताम भले ही मोक्ष की इच्छा रखते हों लेकिन उन्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, कि मुमुक्षुओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? कि सामान्य जनवत तेषाम, जैसे रस्ता पुरुष गली में चलने वाले सामान्य लोग हैं ना, जैसे उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे ही इन लोगों को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, भले ही वो ग्रस्त हो, अनुवृत्ति हो, महावृत्ति हो, मुनि हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी उन्हीं के समान। कौन, किनको? कि जो इसको कर्ता मानते हैं उनको नहीं होगी। अब मान लीजिए एक किन गाथाओं की उत्थान का है, देखो लोयस कुणई बिन्नु, ये 321, 322, 323 समय सुर नरे त्रिय समरणारम पिये अप्पा यदि कुब्बदि छब्बे काये लोय समरणान मेयम सिद्धंतम जयण दीसई विशेषो। कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा है, लोयस कुणई बिन्नु, वो सामान्य जनवत का अर्थ है कि लोक की रक्षा करने वाला विष्णु है, ऐसा जो लोग मानते हैं। क्या कुछ लोग ऐसे हैं ना जगत में कि लोयस कुणई बिन्नु, तो यहां पर कुणई में तो करना होता है, लेकिन करना का अर्थ रक्षा करना है। क्यों लगाना रक्षा करना? क्योंकि विष्णु लिया ना, ब्रह्मा लेते तो हम करना मानते, महेश लेते तो नाश करना मानते, क्योंकि लोक में विष्णु को रक्षा का कर्ता माना है। तो मैं परद्रव्य की रक्षा करता हूं, माने परद्रव्य में कुछ भी करता हूं, ऐसा मान, देखो मैं बताऊंगा विष्णु क्यों लिया, ऐसा मानने वाले और सुर नरारय त्रिय मान से सत्य, और देव को, मनुष्य को, त्रिंच को, ये चारों के तीन लिखे ना, इनको मैं, इनकी मैं रक्षा करता हूं, ऐसा समणानम, ऐसा श्रमण, क्योंकि श्रमण ऐसा तो नहीं मानता कि मैंने इनको बनाया है, श्रमण यही मानता कि मैं इनको मारता हूं, तो नाश का करता भी नहीं मानता, तो हम शंकर जी का क्या काम है उदाहरण के तौर में, और वो करता भी नहीं मानता तो ब्रह्मा जी का क्या काम, लेकिन वो ये मानता है कि मैंने जीवों की रक्षा की ईरिया समिति पूर्वक चलकर, समझे ना, एसना समिति से, आदान निक्षेपण समिति से, मैंने जीवों की रक्षा की, ऐसा श्रवण मानता है। तो इसलिए उन्होंने वो कहा कि वो उनके समान हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि विष्णु जगत की रक्षा करता है, कि कम से कम वे सामान्य जन तो ये तो नहीं मानते कि मैं जगत की रक्षा करता हूं, वे तो ये मानते हैं कि विष्णु जगत की रक्षा करता है, लेकिन ये श्रवण तो ये मानते हैं कि मैं इनकी रक्षा करता हूं, ये तो खुद ही भक्त विष्णु बन गए तरकी। तो कहते हैं कि लोय श्रमणान मेयम, ये लौकिक आदमी और उस श्रवण माने उस मुनिराज, ये दोनों का सिद्धांतम न दीसदी विशेषो, दोनों के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं रहा, एक दूसरे की रक्षा कर सकता है, ऐसा सिद्धांत दोनों के रहा। देखो एक दृष्टि से देखो तो वो लौकिक जन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने भगवान को कर्ता माना तो खुद को तो अकर्ता ही माना, समस्या तो ये खुद को कर्ता मानने की है, क्योंकि माथे पे बोझा तो तब बढ़ता है हम खुद को कर्ता माने, ईश्वरवादी का बोझा तो इसलिए उतर जाएगा क्योंकि वो ये मानता है कि ईश्वर जगत का करता है, अपने माथे उसने बोझा रखा ही नहीं, लेकिन हमने तो अपने माथे ले रखा है सब। उनका तो भगवान आके बचा लेगा, हमारा तो भगवान दौड़ के आएगा नहीं बचाने के लिए, इसलिए हमको ही बचाना पड़ेगा। क्यों? तो तूने अपने माथे बोझा ले लिया, तो थोड़े तो निश्चिंत हो गए भगवान के माथे छोड़ के। लोयस कुणई बिन्नु सुर नारय त्रिय मानसे सत्य समणानम पी अप्पा, यदि कुणई छब्बे एक आए, और श्रमण भी ये कहते हैं कि छह काय की रक्षा मैं करता हूं, तो लोए वह लौकिक जन और वे श्रवण इन दोनों के सिद्धांत में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोए से कुण बिन्नु लोह को करता है विष्णु, और श्रवणान लौकिक जन कहते हैं कि विष्णु करता है, और श्रवण कहते हैं कि अपनो कुण अधिक मैं करता हूं आत्मा करता है। दोनों के सिद्धांत में अंतर क्या रहा? इस किताब को भगवान ने किया था, मेरे आत्मा ने किया, तो अंतर तो आत्मा ने किया कि परमात्मा ने किया यही रहा। लेकिन इस द्रव्य को किसी किया तो किसी दूसरे ने, हम किसके गुलाम रहे, मुसलमानों के अंग्रेजों के, इससे क्या फर्क पड़ता, रहे तो गुलाम ही ना, वो द्रव्य तो गुलाम हो गया ना जिसकी क्रिया को कोई करता है। भगवान ने बचाया तो भगवान के आभार से दब जाएगा, और मुनिराज ने बचाया तो मुनिराज के आभार से दब जाएगा, क्योंकि वो अपने आप तो नहीं बचा ना, वो तो किसी ने बचाने पर बचा, ये संकट है। तो दोनों के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है। अब देखो कितना कठोर शब्द है, इसलिए मुझे उस लौकिक आदमी को और श्रवण को, इन दोनों में से किसी को मोक्ष होगा ऐसा दिखाई नहीं देता। देखो नव को भी मोक्ष को दी सदी, मेरे को तो इन दोनों में से कोई को मोक्ष होगा ये दिखाई नहीं देता, मैं दोनों ही को मोक्ष नहीं होगा ये साफ दिखाई दे रहा है ऐसा कर। मतलब क्या करें, एक गाथा पढ़े कि नहीं पढ़े, और एक गाथा पढ़े तो किसी मुनिराज का विरोध है क्या? एक 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 आए हैं भाई, मेरे को बोलते हैं कि आपकी किताब में एक वाक्य लिखा उस पर बहुत हो हल्ला हो रहा है साधु के स्वरूप में। मैंने कहा बोलो बोलो क्या है, मैं निकाल दूंगा कि ये लिखा है कि मुनिराज क्या है वो लौकिक प्रपंच सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते, इस पर ऐतराज है बहुत ज्यादा ऐतराज। यानी मुनिराज लौकिक प्रपंचों से सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं, तो मेरा तो शब्द नहीं है, टोडामल जी का शब्द है, मैं तो कोट किया है। लेकिन सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं ये बच्चे के बच्चे के दिमाग में घुस जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं कह रहा हटा दो, गिलेब हो गया, सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं, फिर ये पढ़े तो एक आधा ही हटवा दो फिर। लेकिन ये कहते दो तो किनके समान, क्या हमें तो उस गली में चलने वाला साधारण आदमी जो विष्णु को जगत का कर्ता मानता है वो, और वे मुनिराज मुझे दोनों को मोक्ष नहीं दिखता है कि दोनों को मोक्ष होगा। नित्यम कुब्बत तारम दिशदेव मानुषा लोहे, देव स्वर मनुष्य लोक को करने वाला, अपने को मानने वाला, जो वो विष्णु को कर्ता मानने वाला हो, ये इसको मानने वाले ही मैं रक्षा करता हूं, उन दोनों में से मेरे को कोई को मोक्ष नहीं दिखता है। कितना कठोर लिखा है देखो। और इसके बाद वो 200 मां अपने सेंट, 100 को भी सेंट परसेंट सत्य मानते हैं ना, ये 200% सत्य इसमें लिखा है, 200 मां कलश है। और इसके बाद लिखा कौन, नास्ति सर्वोपि संबंधो पर द्रव्यात्म तत्त्वयो कर्ति कर्मत्व संबंधा भावे तत्कर्तिता कुतः। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि पर द्रव्य में और आत्मा में कोई भी संबंध नहीं है। जब कर्ति कर्म संबंध नहीं है तो फिर आत्मा पर का कर्ता कैसे हो सकता है? अब मैं एक पूछता हूं प्रदीप जी कि इस 200 में इस कलश में से कि आप सब संबंधों का तो निषेध करते हैं, एकत्व ममत्व स्वामित्व क्यों, कर्तृत्व भोक्तृत्व और ज्ञाता के संबंध को क्यों नहीं निषेध करते हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि इसका श्लोक का अर्थ में ऐसा है कि ज्ञाता के संबंध का निषेध करने की बात है इसमें? आगे पीछे से प्रकरण उठा के देखो पाटनी जी नेमीचंद जी साहब, इसमें ज्ञाता के संबंध के निषेध की बात है कि उसे छोड़ के बात है? सर्व लिखा ना, तो सब लिखा दो, ज्ञाता के भी लगा दो, है थोड़ी बुद्धि तो पढ़ के देखो कि ज्ञाता के लेना कि नहीं लेना, सारा प्रकरण आगे से और पीछे से और आगे भी देखना, जानने की तो सिद्धि कर रहा है वो। और फिर नीचे की लेन में साथ कहते हैं कि कर्ति कर्मत्व संबंधा भावे, कर्ति कर्मत्व संबंध के अभाव में उसका कर्ता कैसे होगा। तो यहां भी कर्ता भोक्ता की ही बात चल रही, उस संबंध के निषेध की ही बात चल रही है। अभी यहां पर सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, अकेला कर्ता कर्म अधिकार नहीं। कर्ता कर्म अधिकार में तो साफ लिखा या परिणमति सा कर्ता, तत्परिणामम भवे तत्कर्म, कि जो परिणमित होता है वह द्रव्य ही करता है और द्रव्य का वो परिणमन उसका कार्य है। कितना साफ लिखा है ना। एक कर्तृत्व यह है कि परिद्रव्य के कर्तृत्व का निषेध है, अपनी पर्याय के कर्तृत्व का निषेध नहीं। मैं तो क्रमबद्ध पर्याय की किताब में आज 25 साल पहले यह बात लिखी है कि जैन दर्शन का अकर्तावाद, स्वकर्तावाद, अकर्तावाद कहो चाहे स्वकर्तावाद कहो और चाहे फेरफार नहीं करता है, इन तीनों का एक ही अर्थ है। अकर्तावाद में स्व का कर्ता का निषेध नहीं है, अपनी प्रजा के कर्तृत्व का निषेध नहीं है, है ना। अब तो गुरुदेव के सामने निकल गई थी वो बात, और गुरुदेव ने खूब पढ़ ली और जिन डंगे के चोट सब बात सिद्ध है, कोई ऐसी बात नहीं है। और यही सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का आधार देकर के सिद्ध किया है। अतो अकर्ता अवतिष्ठते, और कर्ता कर्म अधिकार के बाद सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में अकर्ता और अभोक्ता एकत्व ममत्व की बात भी कम है, स्वामित्व के निषेध की चर्चा भी कम है, नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व के निषेध की चर्चा एक सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के कम से कम आधे में जाकर के है। और फिर वो बातें हैं ना कि शब्द तेरे से ना कहें कि तू मेरे को जान, वो ज्ञाता के अधिकार के, वो जो ज्ञाता के संबंध के बारे में चर्चा वहां आएगी, वो जो गाथाएं आएंगी ना तब मैं वो अगले व्याख्यान में वो चर्चा करूंगा। अभी तो ज्ञाता के संबंध को तो उन्होंने उस श्रेणी में ही नहीं रखा विचार की श्रेणी में, अभी तो कर्ता कर्म संबंध की विचार की श्रेणी में बात चल रही है, पढ़ना इनको अच्छी तरह से। पर यहां ये 201 मां कलश देखो, इसमें एक निष्कर्ष दे दिया है, एकस्य वस्तुनः इहांतरेण सार्धम संबंध एव सकलोपियतो निषिद्धा तत्कर्ति कर्म घटनास्ति न वस्तु भेदे पसंति कर्त्य मुनियाश्च जनाश्च तत्त्वम्। हे मुनि लोग और हे जन लोग, दोनों से कहते लौकिक जन और मुनि जन, ये दोनों जने एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ जब कोई संबंध ही नहीं है, सकलोपि संबंधो निषिद्धा, सारे संबंधों का निषेध कर दिया गया, तब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कर्ति कर्म की घटना, कर्ति कर्म की चर्चा, ये सारा जगत चाहे वे सामान्य लोग हों और चाहे वे मुनिराज हों, ये चर्चा क्यों करते हैं मेरी समझ में नहीं आता है ना। वलखान ध्यान में ना। और फिर 202 मां कलश पढ़ के अपन समाप्त करते हैं। ये तू स्वभाव नेमम कलयंती नेमा मज्ञान मग्न महेशो बतते पराका बराका कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भाव कर्मा कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्याम। अत्यंत खेदपूर्वक आचार्य कहते हैं कि जो इस वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते वे बेचारे जिनका पुरुषार्थ पराक्रम तेज अज्ञान में डूब गया है ऐसे कर्म को करते हैं, इसलिए भाव कर्म का कर्ता चेतन स्वयं ही होता है अन्य कोई नहीं। कि भाव कर्म का कर्ता कौन है कि बे अज्ञानी जो ये बात नहीं जानते हैं, बे पर के कर्ता बनते हैं तो करने के भाव रूप भाव के कर्ता बंद होते हैं, पर के कर्ता तो तब भी नहीं होते हैं। सुनो माने अज्ञान अवस्था में ज्ञान जीव ही कर्ता सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, क्या कह रहे हैं। जो इस तत्व को नहीं जानते हैं लिखा ना ये इस ये तू स्वभाव नियमम न कलयंत, इस स्वभाव के नियम को नहीं जानते हैं वे लोग, बरा का माने अत्यंत बेचारे लोग हैं, वे बेचारे लोग पर में करने को जाते हैं तो पर का तो कुछ नहीं कर पाते हैं और करने के भाव के कर्ता बन जाते हैं और करने के भाव को भोगते हैं और करने के भाव को करते हैं और उन्हें कर्म बंद होता है। उन विचारों पे हमें दया आती है। ये एक एंगल से सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकारी की बात हुई, और अब अगला जो एंगल है वो अगले व्याख्यान में कल।